ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा से संघीय निजामती सेवा विधेयक 2082 बहुमत से पारित। पश्चिम नेपाल के 12 जिले आज और कल भारी बारिश के उच्च जोखिम में। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जानकारी। राष्ट्रीय धान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। और ईरान कुछ महीनों के भीतर यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी प्रमुख का दावा। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में संघीय निजामती सेवा विधेयक 2082 बहुमत से पारित किया गया। बैठक के दौरान विधेयक पर चर्चा के क्रम में उठे सवालों का जवाब देते हुए संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता ने कहा कि विधेयक में संघीय निजामती सेवा के कर्मचारियों के करियर विकास को सुनिश्चित करने और कर्मचारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास किया गया है। सांसदों ने कहा कि निजामती सेवा विधेयक को राष्ट्र सेवक कर्मचारियों की सेवा सुविधा और करियर विकास सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी प्रशासन के संचालन में राज्य के आर्थिक भार को कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या आधी करनी चाहिए और उनकी सेवा सुविधाओं में समयानुकूल वृद्धि करनी चाहिए। साथ ही प्रदेश और स्थानीय तह पर काम करने वाले कर्मचारियों को आकर्षक अवसर दिए जाने चाहिए। चर्चा में सांसदों ने विधेयक में नागरिकों को मुआवजे सहित सेवा पाने का अधिकार सुनिश्चित करने, सभी नागरिकों को निजामती सेवा में समान रूप में प्रवेश पाने का अवसर मिलने और सभी स्तरों व निकायों में काम करने वाले निजामती सेवा कर्मचारियों को समान सुविधा व अवसर अधिकार मिलने की मांग की। विजिट वीजा प्रकरण में उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए और गृहमंत्री रमेश लेखक के इस्तीफे की मांग को लेकर कई दिनों से विरोध कर रहे रासोपा और राप्रपा के सांसदों ने आज भी बैठक शुरू होते ही विरोध प्रदर्शन किया। सभामुख घिमिरे ने असंसदीय व्यवहार और अभिव्यक्ति न करने तथा सिर्फ प्रमाणित तथ्यों पर बात करने का निर्देश दिया। बैठक में सभामुख घिमिरे ने अन्य दलों के सांसदों को बोलने का समय दिया। इस दौरान पिछले दिनों की तरह आज भी राप्रपा के सांसदों ने बैठक का बहिष्कार कर बाहर जाने का फैसला किया, जबकि रासोपा के सांसदों ने संसद की कार्यवाही को घेराव कर दिया। इसके बाद बैठक में बोलने वाले सांसदों ने पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के उन्नयन के दौरान भूस्खलन का खतरा बढ़ने पर ध्यान देने, संसदीय मर्यादा बनाए रखने, संसद में उठे सवालों का संबंधित मंत्रालय और सरकार द्वारा जवाब दिए जाने, पर्यटन क्षेत्रों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा की भरपूर व्यवस्था करने, विभिन्न वाहनों से पर्यटकों को परेशान करने वाली प्रवृत्ति को समाप्त करने जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक आषाढ़ 23 गते सोमवार को दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण ने पश्चिम नेपाल के विभिन्न 12 जिलों को आज और कल भारी बारिश के कारण उच्च जोखिम में बताया है। प्राधिकरण के प्रवक्ता सुरेश सुनार ने कहा कि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिम नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है और इस आधार पर विशेष बुलेटिन जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इन 12 जिलों में अधिक जोखिम की स्थिति है। उनके अनुसार सुदूर पश्चिम प्रदेश के बैतड़ी, डडेलधुरा, डोटी, अछाम, कैलाली और कंचनपुर, करनाली प्रदेश के सुरखेत, दैलेख और सल्यान तथा लुम्बिनी प्रदेश के बांके, बर्दिया और दांग में भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। अन्य प्रदेशों के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भी भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। राष्ट्रीय आपदा व्यवस्थापन परिषद ने आपदा जोखिम पर ध्यान देते हुए मौसम पूर्वानुमान संबंधी पूर्व सूचना को प्रभावकारी बनाने लगायत आवश्यक सावधानी बरतने का निर्णय किया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह की अध्यक्षता में आज शहरी विकास मंत्रालय में हुई परिषद की बैठक ने कुछ दिनों से देश के विभिन्न स्थानों में हो रही बारिश के जोखिम को देखते हुए ये फैसला लिया। परिषद के बैठक ने जोखिम वाले स्थानों में रात के समय वाहन न चलाने, भारी बारिश के दौरान संबंधित क्षेत्रों के स्थानियों को सूचना प्रवाहित करने, स्थानीय एफएम और विभिन्न सामाजिक संजालों के माध्यम से सूचना प्रसार का प्रबंध करने लगायत निर्णय किया। बैठक में कार्यवाहक प्रधानमंत्री सिंह ने पूर्व तैयारी में कोई कमी न होने देने का सरकार वाले निकायों से आग्रह किया। संसदीय सुनवाई समिति ने सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश पद के लिए प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल और उच्च अदालत जनकपुर के मुख्य न्यायाधीश श्रीकांत पौडेल से आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पोखरेल ने अपनी कार्य योजना, विचार और अवधारणा पत्र प्रस्तुत किया। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश पद के लिए प्रस्तावित श्रीकांत पौडेल ने भी अपनी कार्य योजना, विचार और अवधारणा पत्र प्रस्तुत किया। समिति ने उच्च अदालत दीपाल के मुख्य न्यायाधीश शांति सिंह थापा और न्याय परिषद के प्रस्तावित सदस्य महेश कुमार नेपाल से कल सुनवाई करने का निर्णय किया है। इससे पहले समिति ने सर्वोच्च अदालत के प्रस्तावित न्यायाधीशों और न्याय परिषद सदस्यों के खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में शिकायतकर्ताओं से कल चर्चा की थी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। आज आषाढ़ 15 के अवसर पर राष्ट्रीय धान दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। ये दिवस प्रतिवर्ष किसानों के परिश्रम को सम्मान देने और धान की रोपाई की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन किसान दही चिवड़ा खाकर नई फसल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। आषाढ़ में एक मुट्ठी बोकर कार्तिक में ढेर काटने की लोकप्रिय कहावत इस मौसम के महत्व को दर्शाती है। ये परम्परा सदियों से चली आ रही है, लेकिन विक्रम संवत 2061 मार्गशीर्ष 29 में मंत्रिपरिषद निर्णय लेकर 2062 आषाढ़ 15 से इसे राष्ट्रीय धान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। खेतों में रोपाई शुरू होते ही दही चिवड़ा खाने की ये प्रथा नेपाली संस्कृति का अहम हिस्सा है। कृषि से जुड़े सभी नेपाली आज इस दिन दही चिवड़ा खाकर आषाढ़ 15 का सब मनाते हैं। इस साल आषाढ़ के मध्य तक भी देश के कई हिस्सों में अपर्याप्त वर्षा के कारण धान की रोपाई कम हुई है। किसानों ने रासायनिक खाद की कमी की भी शिकायत की है, जिससे फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है। धान दिवस नेपाल की कृषि संस्कृति और खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। सुनसरी की रामधुनी नगरपालिका वार्ड नंबर 7 चतरा कांची चौक सड़क खंड में हुई मोटरसाइकिल दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीती रात चतरा कांची चौक से काला बंजर की तरफ जा रही मोटरसाइकिल और विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल आपस में टकराने से ये हादसा हुआ। मरने वालों में 34 वर्षीय इनचरण चौधरी, उनका 9 वर्षीय बेटा प्रनीश और दूसरी मोटरसाइकिल के चालक 51 वर्षीय विंदु यादव शामिल है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी ने दी। संयुक्त राष्ट्र के विकास के लिए वित्त संबंधी 4th अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागी होने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली स्पेन के मैड्रिड पहुंचे हैं। मैड्रिड के विमानस्थल पर प्रधानमंत्री ओली का स्वागत स्पेन के लिए नेपाली राजदूत शनील नेपाल और संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए नेपाल के स्थायी प्रतिनिधि लोक बहादुर थापा ने किया। बता दें कि प्रधानमंत्री ओली के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल काठमांडू से कतर का दोहा होते हुए मैड्रिड पहुंचा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रांसी ने चेतावनी दी है कि ईरान कुछ ही महीनों में यूरेनियम का उच्च स्तरीय संवर्धन फिर से शुरू कर सकता है। इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वैश्विक चिंताएं और बढ़ गई है। ग्रांसी के अनुसार ईरान के पास पहले से ही पर्याप्त मात्रा में संवर्धित यूरेनियम है, जिसे अगर और शुद्ध किया जाए तो वो परमाणु हथियार बनाने में सक्षम हो सकता है। ईरान वर्तमान में 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जो परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक 90% से काफी नजदीक है। 2015 में हुए ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाई थी, लेकिन 2018 में अमेरिका के हटने के बाद से ईरान ने भी धीरे धीरे समझौते की शर्तों को तोड़ना शुरू कर दिया। तेहरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों तक अपनी कुछ परमाणु सुविधाओं तक पहुंच सीमित कर दी है, जिससे पारदर्शिता की कमी हुई है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा से संघीय निजामति सेवा विधेयक 2082 बहुमत से पारित। पश्चिम नेपाल के 12 जिले आज और कल भारी बारिश के उच्च जोखिम में। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जानकारी। राष्ट्रीय धान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। और ईरान कुछ महीनों के भीतर यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी प्रमुख का दावा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।